सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत काफी लंबे अरसे के बाद फिर से यहाँ नजीबाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहाँ इस विशाल रूप में आप सभी के दर्शन हो रहे हैं और बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। जिस कदर आप सभी श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक भक्ति भाव से युक्त होकर यहाँ पर उपस्थित हैं और इन घड़ियों को इन लम्हों को, वैसे तो बजाते खुद सत्संग जिसको हम कहते हैं, सत्संग में बीती हुई तमाम घड़ियाँ वही मुबारक होती हैं, वही शुभायमान होती हैं। तो इसलिए भक्त जहाँ पर भी उपस्थित होते हैं, इस सत्य के नगमे गाते हैं, इस सत्य की चर्चा करते हैं, इस सत्य की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए इस भाव से युक्त होकर जो भी लम्हे जो भी घड़ियां बीतती हैं वही मुबारक होती हैं। तो यहाँ नजीबाबाद में इस यात्रा के दौरान ये एक ऐसा पड़ाव जहाँ पर करीब 20 बरस के बाद आने का मौका मिला, और 20 बरस का मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा जन्म ले और शायद विवाह तक पहुंच जाए, 20 साल इतने में ही गुजर जाते हैं। इतने लंबे अंतराल के बाद एक स्थान पर इसी तरह से शायद 20-22 बरस हो गए थे या इससे अधिक, तो वहाँ एक बहन आई, वो कहने लगी, आप यहाँ आए थे जब मैं 10वीं में पढ़ती थी, अब मेरी बेटी 10वीं में पढ़ती है, तब आए हो। तो इस प्रकार से स्थान स्थान पर जाने का मौका मिलता है, देश भर में अनेकों प्रांतों में जाने का अवसर मिलता है। अभी पीछे ही फरवरी में पंजाब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चंद स्थानों पर जाने का मौका मिला, और उसके बाद कहीं राजस्थान के भिवाड़ी में, और फिर ये दिन, हालांकि मार्च का महीना ऐसा होता है बरसों बरस से जिस महीने में प्रांतीय समागम होते हैं, जैसा कि पिछली मार्च को एक साल पहले 7 और 8 तारीख को हरिद्वार में उत्तराखंड का समागम आयोजित हुआ था, और पिछले साल मार्च के महीने में जबलपुर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का समागम, रांची में झारखंड और बिहार का समागम, और वर्धमान वेस्ट बंगाल में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की तमाम स्टेट्स का समागम। तो मार्च के महीने में अक्सर अनेकों समागमों के आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा अवसर ऐसा मौका नहीं बन पाया, तो चंद यात्राएं इस रूप में चली हैं। और ये यात्रा भी जो मुजफ्फरनगर से आरंभ हुई और मुजफ्फरनगर के बाद जहां रास्ते में कुछ पड़ाव आए और रात्रि ही कल मसूरी पहुंचना हुआ, और आज दोपहर मसूरी से ही चले और सीधा यहां पंडाल में पहुंचना हुआ, तो ये यात्रा चंद दिनों की उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो चल रही है, तो इस यात्रा में भी जहाँ जहाँ पर भी जाने का मौका मिल रहा है वहाँ वहाँ ही इसी प्रकार की लगन देखने को मिल रही है। जैसा कि जम्मू कश्मीर में भी 6 बरस के बाद जाने का मौका मिला, और इन 6 बरसों में वहाँ संगत इतनी बढ़ चुकी, इतना परिवार, ये मानव इतना फैलाव प्राप्त कर चुका कि जो साथ में थे सारे ही अचंभे में कि 6 बरस में ही यहाँ पर कितने ही सत्संग कायम हो चुके हैं। तो इसी तरह से ये सच को जन जन तक पहुँचाने के लिए, हर आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ने के लिए भक्त कितने जतन करते हैं, कितने प्रयास करते हैं, कितने परोपकार करते हैं, ताकि कोई भी वंचित ना रह जाए इस जन्म का लाभ जो ना प्राप्त कर पाए। क्योंकि ये सबसे बड़ा लक्ष्य इस जीवन का यही है कि अपने मंजिल मकसूद को प्राप्त करना। ये प्रभु परमात्मा, ईश्वर निराकार पारब्रह्म परमात्मा जो एक ही है, जो सर्वत्र समाया हुआ है, जिसकी अंश आत्मा है, आत्मा जो हर घट में बसती है, तो इसलिए हर आत्मा का कल्याण इसी से होता है जो महापुरुषों ने विधि युगों युगों से बताई है कि जब तक आत्मा इस परम अस्तित्व अपने मूल की पहचान नहीं करती, यानी कि अगर आत्मा ज्ञानता में है तो आत्मा को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। ये आत्मा का सफर जो चलता आ रहा है जिस्मों से लेकर योनियों से योनियों का सफर, और जब इंसानी जन्म मिलता है तो इसको मुबारक जन्म माना जाता है, क्योंकि यही जन्म प्राप्त होना एक सुनहरी अवसर के रूप में देखा जाता है। जबकि आत्मा की बात बन सकती है, जब आत्मा अपने पड़ाव मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और इसीलिए महापुरुषों ने इस इंसानी जन्म की कदर करने के लिए कितने कितने वचन कहे हैं कि हीरे जैसा जन्म है। लेकिन हीरे जैसा जन्म तो मिला, लेकिन ये नाता ना जुड़ा, ये जागृति ना आई, तो फिर कहते हैं कि कौड़ी बदले जाए, फिर यही हीरे जैसा जन्म इसका मूल्य पड़ जाता है कौड़ी। तो ये कौड़ी कीमत किस कारण पड़ी इस जीवन की? इसलिए पड़ी क्योंकि इंसान ने वो कदम नहीं उठाए, इसने अपने कदम इस सच की तरफ नहीं बढ़ाए, इसने ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके ये सच्ची दौलत की प्राप्ति नहीं की, ये भ्रम नहीं मिटाए, ये उजाला नहीं आया। तो इसलिए ये हीरे जैसा जन्म ये कौड़ियों के भाव चला गया। हर इंसान जिसको ये जन्म मालिक ने बख्शा, हर इंसान के लिए सुनहरी अवसर है, और इतना दुर्लभ है ये जन्म कि जैसे पेड़ की टहनी पर फल लगकर जमीन पर गिर जाते हैं और लाख कोशिश करने पर भी उसको फिर से नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसा दुर्लभ जन्म प्राप्त कर लेने के बाद अगर इंसान ये काम ना करे तो उसको मंदभागा कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि इसकी कैसी की एक इसके भाग्य है। तो ये भाग्य भी बनते हैं इसी मायने से कि जो सबसे दुर्लभ है उस जन्म को पाकर, और फिर जो सत्य ये परमात्मा ईश्वर इसकी प्राप्ति हो जानी, तो इससे उत्तम भाग्य किसके हो सकेंगे। दुनिया में भाग्यों की परिभाषा यही है कि दौलत आ जाए तो ऊंचे भाग्य हैं, संतान आज्ञाकारी हो जाए, या जिसके संतान नहीं है संतान हो जाए तो वो बड़े भाग्य वाला है, उसका बिजनेस चल निकले, अच्छी नौकरी मिल जाए, शरीर रिष्ट पुष्ट रहे। तो ये पैमाना है हमारा कि ये सब कुछ अगर है तो ऊंचे भाग्य हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस जीवन को जीते हुए, शरीर में रहते हुए इनकी भी अहमियत है, लेकिन सबसे उत्तम भाग्य उसी के माने गए हैं जो इंसानी जन्म को पाकर अपने मूल की पहचान कर लेता है, जो इस मालिक खालिक को जान लेता है, जो आत्मा के भ्रम मिट जाते हैं। आत्मा जो जन्मों जन्मों से शरीरों में आ आ के अपने आप को शरीरी मान बैठी है। हम सब में जो चेतन सत्ता है वो आत्मा के रूप में है, लेकिन कभी भी हमें वो आत्म भाव नहीं पैदा हुआ हमारा। हमने जब भी सोचा शरीर के तल पे सोचा, और शरीर के साथ जुड़े हुए कौम, जाति, भाषाएं, संस्कृतियां, काला गोरा, पगड़ी टोपी, इसी तक ही हमारी हमेशा सोच रही। ये कभी भी हमारे ख्याल में नहीं आया कि मैं मूलतः आत्मा हूं। और इसीलिए आज संसार में जो बखेड़े देख रहे हैं वो आत्म तल तक नहीं है। हम केवल जिस्मानी और जिस्म के साथ जुड़ी हुई पहचाने उनको इतनी अहमियत देते चले गए कि जो मूल था वो तो अलोप हो गया, और जिसका उस रूप में महत्व नहीं है उसको हम बहुत महत्ता देते चले गए। और उसी के कारण संसार में इंसान और इंसान का टकराव, जाति पाति को लेकर, जब आत्मा एक ही परमात्मा की अंश और परमात्मा जो मूल है आत्मा का, उसकी कोई जाति नहीं है, तो फिर उसकी अंश की भी जाति नहीं है। लेकिन हम कदम कदम पर जाति पाति की दीवारें खड़ी करते हैं, और दूसरी तरफ पढ़ते भी हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। जिस जाति का अभिमान करता है इंसान, उसको भी कबीर जी जैसे भक्तों ने कह दिया कि जाति का गर्व मत कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते उपजे बहुत विकारा। कि जाति का अभिमान और गर्व करना, कहते हैं ऐसा जो करता है वो मूर्ख है। जाति का गर्व मत कर मूर्ख गंवारा, मूर्ख भी है और गंवार भी है, ये उन्होंने कीमत डाली है उनकी, जो जाति पाति के नाम पर अभिमान भी करते हैं और जुल्म भी करते हैं। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। तो वास्तविकता में हरि की प्राप्ति हो गई, आत्मा को मूल की प्राप्ति हो गई, तो फिर ये बखेड़े समाप्त हो गए, फिर असल पहचान मिल गई, फिर असल बोध हो गया, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। जो सेल्फ है हमारा, हमारा असली अस्तित्व, द ट्रू सेल्फ, ये ट्रू सेल्फ जो कहा अंग्रेजी में, कि हमारी असली पहचान वो हमारी उस नूर के रूप में है, उस आत्मा के रूप में है, जिसके बारे में कहा कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक ही खलकत सारी है। कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक पूर्य ओ सर्वथाई। यानी कि वो नूर जो है वो हमारी असली पहचान है। तो ये बाकी के हमारे लबादे, ये बाकी के हमारे बाहरी रूप, ये हमारी संस्कृतियाँ और कौमें और नस्लें इत्यादि, इससे हम ऊपर उठ जाते हैं, मजहब मिलत से ऊपर उठ जाते हैं। अब मजहब की भी दीवारें नहीं रहती हैं, क्योंकि जैसे जाति के सवाल, इसी तरह से मजहब मिलत के सवाल, मेरा राम तेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह तेरा राम, और इस प्रकार से हम इसके कारण भी उलझते चले गए। ये हमें बोध ही ना हुआ कि राम वही है जो अल्लाह है, और अल्लाह वही है जो राम है, गॉड वही है जो कालपुरख है, जिसको अनंत नाम दिए गए, क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है, और अनंत गुणों का मालिक है ये प्रभु परमात्मा, इसलिए इसके नाम भी अनंत हैं। जिसको जो जो भी गुण प्रोमिनेंटली भासता चला गया, महसूस होता चला गया, वो उसको वही नाम देते चले गए। इसीलिए कबीर जी ने भी कहा कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। कि मैदा तो एक ही है लेकिन नाना प्रकार के पकवान बन रहे हैं। इसी तरह से मूलतः तो ये परमात्मा है और यही एक हर घट में बसता है, और इसने जो सृजना की है, ये जो रूप बनाए हैं, ये भिन्न भिन्न है, जैसे सुराही हो घड़ा हो। अब उनमें मट्टी तो एक जैसी ही लगी है लेकिन उसको अलग अलग रूप दे दिए गया। लोहा तो एक ही है लेकिन एक ही लोहे से कितने रूप बना दिए जाते हैं। जैसे वचन आते हैं कि लोहा तो एक है, घड़ने में है भेद, ताई का बख्तर बने और ताई की शमशेर, कि उसी लोहे से ढाल भी बन रही है, उसी लोहे से तलवार भी बन रही है। तो लोहा तो एक है, घड़ने में है भेद। यानी कि इसी तरह से कोई औरत का रूप बना दिया मालिक ने और कहीं मर्द का रूप बना दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरत नीचे दर्जे की हो गई और मर्द जो है वो ऊंचे दर्जे के हो गए। इसी तरह से हिंदू ऊंचा है या मुस्लिम ऊंचा है, राम ऊंचा है या अल्लाह ऊंचा है, ये सवाल ही बेमायने हैं। और ये बेमायने सवाल उनके लिए ही हैं और उन्हीं के द्वारा हैं जो अज्ञानता में रहते हैं, जिन्होंने अल्लाह को नहीं जाना, जिन्होंने राम को नहीं जाना, इसके असली रूप को जाना ही नहीं। और जिन्होंने जान लिया वो मुस्लिम होकर भी फिर वो उस रूप में सवाल नहीं खड़े करते, वो हिंदू होकर भी वो सवाल मज़ो मिलत का नहीं खड़ा करते, वो सिख होकर भी वो सवाल खड़ा नहीं करते, वो यहूदी होकर ईसाई होकर वो सवाल खड़ा नहीं करते, जिनको ये बोध हो जाता है। और अगर ये सवाल हैं और इन्हीं के आधार के ऊपर मार काट जुल्म और सितम निर्दयता मज़हब का नारा बुलंद करके, पीरों पैगंबरों का नारा बुलंद करके मासूमों की जानें ली जा रही हैं, तो ये प्रमाण पत्र हैं कि अज्ञानता में रह रहे हैं वो लोग। दूर का भी वास्ता नहीं ज्ञान से, दूर का भी वास्ता नहीं सच्चे धर्म से, कोई पहचान उनको नहीं हुई, अज्ञानता ही ढो रहे हैं, अंधेरा ही ढो रहे हैं और अपना बोझ और बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये आज के ये फैसले नहीं हैं कि आज यहाँ इस मंच से कहे जा रहे हैं, ये युगों युगों से जितने भी भक्तों महापुरुषों के वलियों गुरु पीर पैगंबरों के जो वचन आए हैं वो वही एक फैसलों के रूप में हैं, वही पैमाने हमारे सामने रखते आए हैं कि इसके ऊपर जो खरा उतरेगा वही सच्चा धर्मी होगा, वही सच्चा इंसान होगा, वही इंसान होने की पहचान रखने वाला होगा, वही सच्चा धर्मी होगा जिसमें कदूरत और वैर और ईर्ष्या की आग नहीं जल रही होगी, जिसमें दया करुणा का भाव होगा, वो सच्ची धर्मी होने की पहचान बनाएगा। इसी तरह से जो आदमियत है, जो इंसानियत है, वो वास्तविकता में हमें वो पहचान प्रदान करती है जिसमें ये भाव होते हैं, ये गुण होते हैं, जो नफ़रतों की आग में जलते जलाते नहीं हैं, जो प्यार भरे हृदय से युक्त होते हैं, जो प्यार ही देते चले जाते हैं, जिनके मन में किसी के प्रति मलाल नहीं होता है, जो किसी के प्रति जलन और घृणा की भावना नहीं होती है, वो वास्तविकता में इस प्रभु के बंदे जानकर हर किसी के लिए शुभकामना करते हैं, भलाई की कामनाएं करते हैं, उनके हृदय में ये भाव होते हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। अब जब सब शब्द का इस्तेमाल हुआ, इससे किसको बाहर निकालेंगे? सबका भला करो भगवान। अब छोटे से बच्चे को भी जो क्लास में पढ़ता है उससे ही पूछ लें कि सबका मतलब क्या होता है, वो बच्चा कभी भी कहेगा कि सबका मतलब पंजाबी होता है, सबका मतलब सिंधी होता है, गुजराती होता है, सबका मतलब मराठी होता है, सबका मतलब मुसलमान होता है, सबका मतलब सिख होता है? नहीं, वो बच्चा भी जानता है कि सबका मतलब सब होता है। तो अगर यहाँ महापुरुषों के कथन ये हैं कि सबका भला करो भगवान, तो क्या उनका मतलब ये था कि मैं जिस कौम से हूँ केवल उनका भला हो भगवान, जिस भाषा को मैं बोलता हूँ वही भाषा को बोलने वाले का हो कल्याण, जिस पैगंबर को मैं मानता हूँ उसी पैगंबर को जो मानने वाले हैं उन्हीं का भला हो? नहीं, सब का मतलब सब होता है। सब आए सेक में डाल पात पर फूल, कबीरा पीछे क्यों रहे गह पकड़ा जब मूल। तो इसीलिए इसी आधार के ऊपर ही सबके लिए भलाई की कामनाएं हुई। जहां पर ये ज्ञान था, जहां पर ये बोध था, वहीं पर से ही ये प्रार्थनाएं उपजी हैं। इन प्रार्थनाओं का जन्म वहीं से हुआ है जहां पर ये बोध था, जहां ये ज्ञान था, चाहे वो सतयुग में हुआ, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में, या कलयुग में। ये अज्ञानता वालों से कभी भी ये प्रार्थनाएं हम तक पहुंचनी नहीं थी, अगर अज्ञानता वालों के वश में होती। ये ज्ञान वालों के द्वारा ही हुई। अगर अज्ञानता वालों के द्वारा होता तो कहीं पर भी ये एक उज्ज्वल पहलू संसार के सामने ना आता। फिर तो वही हरनाकश्यप वाली प्रवृत्ति, अभी होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और इतिहास के पन्नों में जो जिक्र आता है कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन, और हिरण्यकश्यप जो अंधकार का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है, अपने बच्चे प्रहलाद को ही मारने काटने पे लगा हुआ है क्योंकि वो उजाले वाला है। वो जल भी राम थल भी राम कह रहा है और हिरण्यकश्यप कहता है कि ये बच्चा ये राम का नाम क्यों लेता है, इसकी ज़ुबान से ये निकलना चाहिए कि जल भी हिरण्यकश्यप थल भी हिरण्यकश्यप। तो अगर हिरण्यकश्यप से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सबका भला करो भगवान वो कहेगा या मानेगा या उसके भाव हैं, ये तो प्रहलाद ही के ही भाव हो सकते हैं। तो यानी कि जो जो भी सबकी भलाई की कामनाओं और सबका भला करने के लिए जो प्रयास और जतन है, उसके पीछे ये ज्ञानी जनों का ही एक कार्य है, ये ज्ञानी जनों की ही देन है। तो इसलिए महापुरुष संत जन एहसास कराते हैं कि हमारे भी वही भाव बन जाएंगे अगर हम भी ब्रह्म ज्ञानियों की तरह हम भी इस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे और भ्रम की समाप्ति कर लेंगे, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के बगैर भ्रम की समाप्ति नहीं होती है। एक भ्रमों से निजात तभी मिलता है, दीवारों का गिरना तभी संभव है, दूरियों का मिटना तभी संभव है जबकि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर भी आज छोटे छोटे बच्चे भी बोले और वो भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमें ये प्राप्ति हुई है, ये ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, हमने ये जाना है, जिससे हम अनजान थे इसको जाना है, हमने पाया है, जिसको पाने से लोक और परलोक सवर जाता है, हमने वो पाया है जो मीराबाई ने पाया, हमने वो पाया है जो कबीर जी ने पाया, हमने वो पाया है जो तुकाराम जी ने पाया। और यही प्राप्ति हर किसी के हिस्से में हो, इसीलिए भक्त जन ये प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए जन जन तक ये आवाज़ दे रहे हैं, जन जन तक को एहसास करा रहे हैं कि इंसानों सोचो, केवल पढ़ने पढ़ाने तक सीमित मत रहो, केवल पठन पाठन तक सीमित ना रहो। कबीर जी ने भी इस मंजिल को पाया तो वो भी फिर उसी काशी नगरी में, जैसे यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश के तट हैं, इसी तरह से वाराणसी का भी वो बनारस का भी, वहाँ पर भी उस तट के ऊपर बैठे हुए लोग नाना प्रकार के पठन पाठन करने वाले, नाना प्रकार के जाप करने वाले। तो कबीर जी उन्हीं को संबोधित होकर वो भी उनको यही बता रहे हैं, उनको यही पैगाम दे रहे हैं कि जैसे मैंने जाना है तुम भी जान लो, और मैं अब जान गया हूँ और जानकर अब मैं इसकी महिमा गा रहा हूँ, अब जानकर इसकी स्तुति कर रहा हूँ, अब मैंने जाना है तो मुझे वो दृष्टि मिल गई है, और तुम अभी तक भी वहीं तक सीमित हो, तुम वहीं तक ही अभी खड़े हो जहाँ पहले खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हो, तुम उस रुतबे को नहीं पा सके हो जो गुरु की कृपा के द्वारा मुझे मिल गया है, मुझे वो नज़र दे दी है, अब नज़र ऐसी मिली है जिसके द्वारा मैं इस सत्य को देख पा रहा हूँ और घटघट में इसकी उपस्थिति देख पा रहा हूँ। तो इसलिए कबीर जी के वचन आए सबके सामने कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का बरे करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। तो इसीलिए कबीर जी ने कहा कि मैं आंखों देखी कह रहा हूँ और तू कहे कागज की लेखी, कि तुम केवल अब पठन पाठन तक ही सीमित हो, तुम पढ़ रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, लेकिन जिसकी महिमा गा रहे हो उसका पता ही नहीं है, उसका मालूम ही नहीं है, उसको सीमित किए बैठे हो, उसको आसमानों के ऊपर मान रहे हो, उसको किसी गुफा कंदरा में सीमित कर रहे हो जो असीम है, यानी कि तुम्हें वो बोधी नहीं है। तो तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। बात वही है कि पठन पाठन में कमी नहीं है, जापों में कमी नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ बोध नहीं जुड़ा तो फिर इंसान अज्ञानता में ही रहता है, उसकी हालत वही होती है जैसे तोते की मिसाल हमने अरसे से सुनी है कि एक तोते, उनकी जुबान पर कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे, और यही उन्होंने मुहारनी सीख ली और बोलते चले जा रहे हैं, और शिकारी जाल कंधे पे उठाए हुआ उनकी तरफ आया और उसके कानों में आवाज़ पड़ी तोतों की कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। ये सुनकर शिकारी मायूस हो गया कि मेरा गुजरान कैसे होगा, तो वो वापस लौटने लगा तो उसको ख्याल आया कि इतनी दूर चल के आया हूँ घर से, तो ये तो सारे तोते अब पढ़ लिख गए हैं, तो शायद कोई अनपढ़ आ ही जाए, और उसने जाल बिछा दिया, दाने बिखेर दिए। अब तोते वही बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे, ये कहते हुए ठीक जाल के ऊपर आकर बैठते हैं, दाने चुनने लग पड़ते हैं, और एक ही झटके में छलांग लगाकर शिकारी उन सब तोतों को उस जाल में बांध लेता है और कंधे पे रख कर जा रहा है घर की तरफ, और उसी कंधे में से लटके हुए जाल में तोते अब भी बोले जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। यानी कि वहाँ पर केवल मुहारनी थी, केवल शब्द थे उन तोतों के पास, उनको कोई बोध नहीं था। तो वही बात कबीर जी ने भी देखी कि ये केवल शब्दों तक सीमित रह गए हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु की पहचान नहीं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह की पहचान नहीं, इसीलिए ये दीवारें खड़ी करते हैं, इसीलिए दरारें पैदा करते हैं, इसीलिए मन में दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, इसीलिए हिंसक हो जाते हैं छोटी सी बात को लेकर, क्योंकि इनको बोध नहीं है। तो ये कहाँ पर इनका छुटकारा होगा, तोतों की तरह कहाँ छुटकारा होगा, ये तो निश्चय ही जाल में बंधेंगे ही बंधेंगे, कोई छुटकारा नहीं, ऐसों की आत्मा किसी का भी छुटकारा नहीं है। इनको तो दोजख की आग में जलना ही जलना होगा। ये नियम है, ये उसूल है, युगो युगों से बने हुए हैं। तो इसलिए पार उतारा उन्हीं का हुआ, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, जिनको ये बोध हुआ, जिन्होंने ये सत्य को इसके असली रूप में जाना, उनकी ही दीवारें गिरीं, उन्हीं की दूरियां मिटी, वही भाईचारे की भावना को से युक्त होकर भाईचारे को बढ़ावा देने में लग गए, वही दूसरों को गले लगाते चले गए, तमाम सवालों को एक तरफ रखकर केवल और केवल एक इंसानों वाली दृष्टि से देखते हुए कि ये मेरे ही मालिक के बंदे हैं, ये खुदा के परिवार का अंग हैं, मैं भी उसी परिवार का अंग हूँ। तो इसलिए वहाँ पर अपनेपन का भाव मजबूत हुआ, वहाँ पर एक दूसरे को दुत्कारने के भाव समाप्त हुए, और जब ये ऐसी स्थिति बन गई कि जहाँ पर अपनेपन का भाव पैदा हो गया है, वहाँ पर अब बेगानेपन का भाव नहीं रहा है, वहाँ पर अब फिर नफरत का भाव भी नहीं रहा, अब रह गया क्या, केवल प्यार रह गया। और प्यार ही तो महापुरुषों संतों ने कहा कि प्यार ही प्यार हम करते चले जाएं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कि ये प्यार की ही करने के लिए ही महापुरुषों ने प्रेरित किया है कि हम प्रेम से रहें, हम प्यार करें। भाईचारा असल में वही होता है जहाँ प्रेम है, यानी कि ये प्रेम हर हृदय में बसे, तभी वो प्रेम की गंगा बहाने वाले बन जाते हैं। और जिनको ये अवस्था नहीं मिलती, वो खून की नदियाँ बहाने वाले बन जाते हैं। तो जिसके हृदय में प्रेम होता है, वो हितकारी होता है, वो हित का भाव रखता है, वो दया और करुणा वाला होता है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हम भी ये प्यार का पाठ पढ़ लें, हम भी ये प्रभु जिसको प्यार का ही रूप माना गया है, जो प्यार का स्रोत मुजस्मा है, इसीलिए हमने वो पंक्तियाँ बालपन की अवस्था से सुनी है कि लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, कि परमात्मा प्यार का रूप है। तो इसलिए जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, तो इसलिए ये प्रेम करते चले जाएं, ये प्यार करने का सलीका आता चला जाए, वैर ईर्ष्या और घृणा, तशद्दुद और जुल्म और सितम का दामन छोड़ते चले जाएं, मानवता और इंसानियत का दामन पकड़ते चले जाएं, और सब प्रेम प्यार का ये जहान बसाते चले जाएं, और एक गुलजार खिलाते चले जाएं। प्यार के बगैर ये संभव ना होगा, इस सत्य से नाता जोड़े बगैर संभव ना होगा। अगर हम जन्नत का रूप धरती पे देखना चाहते हैं, तो वाकई ही ये कदम उठाने होंगे, ये जागृति प्राप्त करनी होगी, ये नाता जोड़ना होगा, ये बोध हासिल करना होगा, और इस कदर इस जीवन की शोभा बनानी होगी, इस जीवन का सही मायनों में लाभ उठाना होगा। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि समय हो काफ़ी हो चुका है, रात्रि का वक्त है, और आपने भी अपने अपने घरों को पहुंचना और अनेकों जिम्मेदारियां निभानी होती हैं गृहस्थियों ने, और यहाँ इस पंडाल तक पहुँचने तक रास्ते में भी देखा कहाँ कहाँ बसें और गाड़ियां खड़ी हैं, और एकदम से गाड़ियां निकलनी होती हैं और ट्रैफिक भी हो जाता है। तो इसलिए शब्दों का विराम देते हुए दास आपसे इजाज़त चाहेगा, वरना शब्द तो शाम से ही चल रहे हैं जब से सत्संग आरंभ हुआ है, और जो पहले भी संदेश गीत कविता व्याख्यान के रूप में दिए गए वो कोई कम अहमियत वाले नहीं थे। तो इसलिए दास और ज़्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और अंत में फिर से खुशी जाहिर करेगा जो यहाँ नजीबाबाद में आकर आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हुई हैं। और दातार कृपा करे आप सभी को भक्ति करने की शक्ति दे, इसी तरह से इंसानियत की डगर पर चलते चले जाएं, अंधकार को मिटाते चले जाएं। सत्संग जी धन्यवाद।